मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 8 अगस्त 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं सिविल सेवाओं का कार्यकाल, इस विषय पर थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आप सबने न्यूज में सुना है, अखबारों में भी खूब पढ़ा है और ये हर 2 महीने में एक बार होता है, जिससे आप सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। रेपो रेट, रेपो दर, जो हर बार रिजर्व बैंक अपनी हमेशा 2 महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं, उसकी समीक्षा करता है, देश की अर्थव्यवस्था का जायजा लेता है, भविष्य का अनुमान लगाता है और उसके आधार पर रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इन सब में कमी घट या बढ़ाना या ज्यों का त्यों रखना, इसका निर्णय लेता है। और मित्रों, इसके जरिए वो हमारे मार्केट में यानी कि अर्थव्यवस्था में जो नकदी है, जो कैश है, जो मुद्रा है, उसको रेगुलेट करता है। इसके बारे में हम लोग कई बार बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, तो उस पर बात करना एक तरह से मुझे लगता है कि चीजों को बेवजह दोहराना होगा, क्योंकि दूसरे विषय हैं हमारे लोगों के पास बात करने के लिए। तो दोस्तों, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस बार जो उन्होंने रेपो दर में इतनी कमी की है, उसको लेकर के थोड़े से लोग चौंक भी रहे कि क्या बात हुई। इसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है, जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए, अभी आप अक्सर अखबारों में पढ़ रहे होंगे, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं और हमारे यहां तक जो उद्योगपति हैं, वे भी ये कह रहे हैं कि भारत में मंदी की स्थिति आ गई है, यानी जिसे हम कहते हैं रिसेशन आने वाली है, मतलब वो दिखाई दे रही है। अखबारों में आप ये भी पढ़ रहे होंगे कि खासकर जो ऑटो सेक्टर है ना, जो कार, बसें, ट्रक, बाइक, ये जो सेक्टर जिसे हम ऑटो सेक्टर कहते हैं, इस ऑटो सेक्टर में पिछले 8-9 महीने से बहुत जबरदस्त रूप से गिरावट आई है और बीच बीच में आंकड़े भी आ रहे हैं कि लगभग 250 से 300 जो इन सब के शोरूम होते हैं ऑटो के, वो बंद हो चुके हैं। इस बात का प्रमाण है कि उनकी बिक्री कम हो रही है और उससे लगभग 50,000 लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। और सामान्यतया जब ऑटो सेक्टर में इस तरह की समस्या आती है, तो जो अर्थशास्त्री है वो मानते हैं कि ये एक तरह से आने वाली मंदी का संकेत है। और जो इंटरनेशनल एजेंसी भी है, वो धीरे धीरे भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको कम करती जा रही अनुमान के तहत। अभी आपने देखा कि रिजर्व बैंक ने भी उसमें थोड़ी सी कमी कर दी है, और चूंकि अब दुनिया की एजेंसियां भारत के अर्थव्यवस्था को धीमी मानने लगी हैं, तो अब बहुत जरूरी है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में धन पहुंचाएं, नकदी पहुंचाएं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, डिमांड जनरेट हो सके। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ने अभी रेपो दर में कमी की है। इससे कैसे डिमांड बढ़ेगी और कैसे अर्थव्यवस्था में अधिक धन पहुंचेगा, मित्रों, उसे थोड़ा सा आपको समझना होगा। बेहतर होगा कि आप बुक्स के जरिए समझने की कोशिश करें, नहीं तो और कोई जो अर्थशास्त्र के बारे में जानते हो, लेकिन आपको यह समझना चाहिए। बाद में कभी कुछ समय के गैप के बाद हो सकता है कि मैं इस विषय पर आपसे बात करूं। फ्रेंड्स, जो जम्मू कश्मीर का जो अभी मामला है, देखिए अभी तो शुरुआत ही हुई है, आपको डेली इस पर कुछ न कुछ बातें पढ़ने को और सुनने को मिलेंगी। अभी एक बात जिसकी मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, वो हो पाकिस्तान। अब आप देखिए कि पाकिस्तान इसके बाद से कितनी बुरी तरह से बौखला गया है और वो बौखला करके कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहा है, जो सही पूछे तो राजनीतिक दृष्टि से प्रौढ़ता का प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। उसने हमारे जो हाई कमिश्नर थे उनको कहा कि देश छोड़ करके जाओ, हमारे यहां जो उनका हाई कमिश्नर था उनको भी वापस बुला लिया, तो एक तरीके से यूं कह लीजिए कि राजनीतिक संबंधों का दर्जा कम कर दिया। उसने व्यापारिक संबंध तोड़ दिए, जो हवाई मार्ग थे वो बंद कर दिए, इससे पहले भी वो बंद कर चुका था। अब सवाल यह है कि इससे भारत का कितना नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी जब घटना होती है जबकि इंटरनेशनल, तो उसे आपको भारत से जोड़कर देखना चाहिए। कल भी आपको ध्यान होगा कि जब मैंने चीन की मुद्रा के अवमूल्यन के बारे में बात की थी, तो स्पेशली मैंने चर्चा की थी कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने अभी ये किया है, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, भारत ने तो इससे पहले ही कदम उठाते हुए इससे जो आयातित सामान थे उस पर 200% टैक्स लगा दिया था, इसे अपने मोस्ट वांटेड नेशन के दर्जे से बाहर कर दिया था, और इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार था बहुत ज्यादा घटा है, और व्यापार हमारा भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादा है नहीं। मैं समझता हूं कि 3% या के आसपास ही है, मतलब नहीं के बराबर है। उसके बाद से तो व्यापार बहुत कम होता चला गया था। तो ठीक है, आप व्यापारिक संबंध तोड़ दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपने एयर रूट पहले भी बंद किया था भारत, उसमें भी सर्वाइव कर रहा था, उससे आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान है। देखिए कि आप कब तक इसको बनाए रख सकते हैं। आपने कहा है कि इस मामले को आप यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे, ठीक है, आप उठाते रहिए, क्योंकि आप भारत और पाकिस्तान के बीच में बाकायदे संधियां शिमला समझौता है कि जिसमें आपसी मामले को दो देश ही परस्पर बातचीत के जरिए सुलझाएंगे, तो वहां आप नहीं टिक पाएंगे। तो ये कुछ स्थिति है, चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के तहत अब जो पाकिस्तान कदम उठाएगा उस पर आप थोड़ा सा नजर रखिएगा, सतर्कता के साथ उसका विश्लेषण करते जाइएगा। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, राजकोषीय संघवाद के बारे में। यह फिलहाल मुझे इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, राजकोषीय संघवाद। देखिए, राजकोषीय संघवाद तो आप जान चुके हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने फेडरलिज्म पर बात की है, कमजोर होता संघवाद पर मैंने आपका ध्यान डाला था, खींचा था। यहां जो राजकोषीय संघवाद, इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार के पास जो धन है उसमें भी संघवाद है। आपको मालूम है कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन होता है, बाकायदे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करते हैं कि जो पैसा केंद्र के पास होगा, जो भी पैसा केंद्र इकट्ठा करती है, उसे राज्य और केंद्रों के बीच में कैसे विभाजित किया जाए। ठीक है, उसके लिए एक बाकायदे संस्था बनी हुई है। अब केंद्र सरकार ने, अभी हमारा जो 15वां वित्तीय आयोग है, राष्ट्रपति से अनुरोध किया है उन्होंने कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, और ये जो 15वां वित्त आयोग है उससे उसने कहा है कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा, देखिए दो, एक तो सिक्योरिटी, जब हम रक्षा कहते हैं तो बाह्य जिसमें आर्मी वगैरह आएगी, और आंतरिक सुरक्षा जब हम कहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर, और भी दूसरी स्थितियां होती रहती है। सिक्योरिटी आपके थर्ड पेपर का बहुत बड़ा टॉपिक भी है, जिससे लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। तो इनके लिए जो आवंटन हो, धन जो दिया जाए, उसके लिए वो उपाय सुझाए। तो अभी तक क्या होता था, देखिए अभी तक होता यह था कि जो भी धन जहां भी खर्च होता था वह केंद्र, वह बकायदे हमारी संसद निर्धारित करती थी, संसद उसका निर्धारण करती थी, संसद को यह अधिकार है, संविधान के तहत यह लिखा हुआ है। और अब अगर उस पर आयोग सुझाव देगा और उसको सरकार मान करके उसमें से धन निकाल लेगी, आवंटन कर दिया ना, तो आवंटन करने का अधिकार केंद्र के पास होना चाहिए, केंद्र यानी कि सदन, संसद के पास होना चाहिए, और संसद में जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यों से भी हैं, तो वो संघवाद वहां दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो संघवाद मुश्किल हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और भी उठाया गया है कि चलिए सुरक्षा की बात तो ठीक है कि वो केंद्र सरकार देखती है, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा की बात है उसमें राज्यों का कम बड़ा योगदान नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे राज्य सरकार देखती है। और एक बात और भी है कि जब राज्यों को जरूरत पड़ती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल को बुलाएं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को बुलाएं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय का पूरा खर्चा राज्य अपने फंड से करती है। यहां तक कि जब चुनाव भी होते हैं तो जिन जिन राज्यों में ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्यूट की जाती हैं उसका खर्चा राज्य सरकार उठाती है। तो जब आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार अपने फंड का इस्तेमाल करती है तो अब कैसे उसका निर्धारण एक आयोग करे। तो ये फेडरलिज्म को लेकर के कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन यदि कुछ भी इस पर आपको पढ़ने को मिलता है तो आप सतर्क रहिएगा और ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट के तहत अवसर का जनसांख्यिकीय झरोखा, ये आपको प्रोवाइड किया गया है, हिंदू का आर्टिकल है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो हमारे यहां डेमोग्राफी की बात की जाती जनसांख्यिकी की, उस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ बहुत अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ने की सलाह मैं देता हूं। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स मुख्य विषय पर। देखिए मुख्य विषय में क्या, उसका भाव क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, इसे आपको आगे इनलार्ज करना होगा अपने लेवल पर, मैं बहुत ज्यादा तो बताने की स्थिति में समय को देखते हुए नहीं हूं। कि अभी सूचना का अधिकार अमेंडमेंट बिल पारित हुआ और उसमें सूचना के अधिकार के तहत सरकार ने यह किया कि जो सूचना आयुक्त होंगे, मुख्य आयुक्त और आयुक्त, उनका वेतन भत्ता, उनका कार्यकाल, ये सब कुछ निर्धारित करेगी केंद्र सरकार, और यहां तक कि जो राज्य के सूचना आयुक्त होंगे उनका भी सब कुछ निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होगा, राइट। इसको लेकर के अब ये बात उठने लगी है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इनके कार्यकाल का निर्धारण कर रही है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये भी हो कि सिविल सर्वेंट्स के कार्यकाल का भी निर्धारण सरकार अपने ढंग से करने लगे। देखिए अभी तो रिटायरमेंट की आपकी एज होती है 58 साल तक, 60 साल तक, कहीं कुछ सेवाओं में 62 साल तक है, कुछ राज्यों में भी डिफर करता है। तो मतलब अगर आप सरकारी नौकरी में आ गए और आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, सरकार बीच में हटा सकती है लेकिन आरोप के तहत, तो आप निश्चिंत होकर के आप 58, 60, 62 साल जो भी आपके रिटायरमेंट की एज है तब तक आप काम करते रहिए। और इसका ये आपको बहुत बड़ी शक्ति भी देता है, साहस भी देता है, निश्चिंतता भी प्रदान करता है कि ठीक है कम से कम अब आप भविष्य के प्रति निश्चिंत हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में आपका कार्यकाल निश्चित नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर वाले से बात करके देखिए तो उनके सिर के ऊपर हमेशा एक तलवार सी लटकी रहती है कि पता नहीं कब तक नौ जॉब है, कब क्या कुछ हो जाएगा। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो कुछ देश वास्तव में सेवा कार्यकाल की गारंटी नहीं देते हैं लेकिन कुछ देश देते हैं, जैसे जापान है, तो वहां बकायदे आपका कार्यकाल निर्धारित है और इसीलिए किया गया है कि निश्चिंत होकर आप काम कर सके। कुछ क्षेत्रों में तो अनिवार्य ही है कि आप कार्यकाल उनका निर्धारित करें और सरकार उस पर हस्तक्षेप न करे, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां उनकी स्वतंत्रता की जरूरत है। जैसे आप देखिए चुनाव आयोग के जितने जो हमारे आयुक्त होते हैं, या जुडिशरी को देख लीजिए, जो हायर जुडिशरी है उसमें या तो कार्यकाल है, एज है, उसको बस उतने तक ही निश्चित है, वो वहां तो एज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने उस उम्र तक काम कर सकते हैं और हटाया जा सकता है लेकिन महाभियोग के द्वारा। दोस्तों इसको लेकर के फिर सिविल सर्विसेज में भी बात होने लगी थी, तो बकायदे फिर लोग जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि कुछ पदों के लिए आप कार्यकाल निर्धारित कीजिए। उसके बाद से ही आप देखेंगे कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कुछ पदों के लिए कार्यकाल निर्धारित कर देती, जैसे राज्य के पुलिस महानिदेशक 2 साल का कम से कम कार्यकाल होगा, जो हमारे चीफ सेक्रेटरीज होते हैं उनका 2 साल का कार्यकाल होगा ही होगा। तो इस तरह से कुछ पदों का निश्चय किया गया। ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि वो जो काम करने जा रहे हैं कुछ तो उनको समय मिले, कुछ समय तो उनको समझने में लग जाता है, फिर वो कुछ लागू करेंगे और पता लगा इससे पहले वो रिटायर हो गए, तो एक व्यवस्था के तहत वो सही रूप में काम कर सकें, निर्भीक होकर के काम कर सकें, निश्चिंत होकर के काम कर सकें और फिर मन भी लगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनका कार्यकाल कम से कम कुछ तो निश्चित हो ही। मुझे लगता है कि अब ये जो मुद्दा है शायद बहस में आए, अब आगे जो भी स्थिति होगी फ्रेंड्स उसे हम देखेंगे, लेकिन चूंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो मुझे लगा कि चूंकि इस तरह की बहस शुरुआत हो गई है, भले ही सुबुगाहट के रूप में ही क्यों न हो, इस पर थोड़ी सी बात की ही जानी चाहिए। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं जिज्ञासा मीना, बबीता सोनी, भूमिका गुप्ता और निसार कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।